राजपूतों के प्रमुख राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। इस वंश की प्राचीनता 5वीं सदी तक जाती है। पुलकेशिन द्वितीय के एहाल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। बाण के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख किया गया है। चीनी यात्री वेनसांग कू जे लो गुर्जर देश का उल्लेख करता है, जिसकी राजधानी पी लो मो ली अर्थात भीनमल में थी। इतिहास के साधन गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के प्रमाणिक साधन उसके बहुसंख्यक अभिलेख हैं। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय मिहिरभोज का ग्वालियर अभिलेख है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है। इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है। यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों तथा उनकी वंशावली को ज्ञात करने का मुख्य साधन है। उसके अतिरिक्त इस वंश के राजाओं के अनेक लेख मिलते हैं, जो न्यायानुधिप रूप में उनके काल की घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रतिहारों के समकालीन पाल तथा राष्ट्रकूटों के लेखों से प्रतिहार शासकों का इनके साथ संबंधों का ज्ञान होता है। उनके सामंतों के लेख भी मिलते हैं, जो उनके साम्राज्य विस्तार तथा शासन संबंधी घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रतिहार युग में अनेक साहित्य कृतियों की रचना हुई। इनके अध्ययन से भी तत्कालीन राजनीति तथा संस्कृति का ज्ञान होता है। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर प्रतिहार राजाओं महेंद्रपाल प्रथम तथा उसके पुत्री महिपाल प्रथम के दरबार में रहा था। उसने काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश आदि ग्रंथों की रचना की थी। इनके अध्ययन से तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। जया नायक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि जहमान शासक दुर्लभ राज प्रतिहार वत्सराज का संबंध था तथा उसकी ओर से पालों के विरुद्ध संघर्ष किया था। जैन लेखक चंद्र प्रभसूरी के ग्रंथ प्रभाव प्रशस्ति से नागभट द्वितीय के विषय में कुछ सूचनाएं मिलती हैं। कश्मीरी कवि कलहन की राज तरंगिनी से मिहिर भोज की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। समकालीन अरब लेखकों के विवरण भी प्रतिहार इतिहास पर कुछ प्रकाश डालते हैं। इनमें सुलेमान का विवरण उल्लेखनीय है। वह मिहिर भोज की शक्ति एवं उसके राज्य की समृद्धि की प्रशंसा करता है। दूसरा लेखक अलम सूदी है, जो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब आया था। उसके विवरण से महिपाल प्रथम के विषय में कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रायः सभी मुसलमान लेखक प्रतिहारों की शक्ति देशभक्ति तथा समृद्धि की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार अभिलेख साहित्य तथा अरब लेखकों के विवरण इन तीनों का उपयोग प्रथम हम प्रतिहार वंश के इतिहास का अध्ययन करने के लिए करते हैं। उत्पत्ति विभिन्न राजपूत वंशों की उत्पत्ति के समान गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति भी विवादग्रस्त है। राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत के समर्थन में विद्वानों ने उसे खजर नामक जाति के संतान कहा है, जो हूणों के साथ भारत में आई थी। इस मत का समर्थन सबसे पहले कैंपवेल तथा जैक्सन ने किया और बाद में भंडारकर तथा त्रिपाठी आदि भारतीय विद्वानों ने इसे पुष्ट कर दिया, किंतु यह मत कोरी कल्पना भर आधारित है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों में खंजर नामक किसी भी जाति के विषय में हमें भारतीय अथवा विदेशी साक्ष्य से कोई भी सूचना नहीं मिलती है। खजर तथा गुजर या गुजर में शब्दों के अतिरिक्त कोई भी साम्य नहीं लगता है। सी वी वैद्य, जी एस ओझा, दशरथ शर्मा जैसे अनेक विद्वान गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मानते हैं। वे इस शब्द का अर्थ गुर्जर देश का प्रतिहार अर्थात शासक लगाते हैं। के एम मुंशी ने विभिन्न उदाहरणों से यह सिद्ध किया है कि गुर्जर शब्द स्थानवाचक है, जातिवाचक नहीं। गुर्जर शब्द का उल्लेख 5वीं-6वीं शताब्दी से मिलने लगता है। इन विद्वानों का विचार है कि यदि गुर्जर जाति विदेशों से आकर भारतीय क्षत्रिय समाज में समाहित होती हैं, तो उसका पुराना नामो निशान बिल्कुल समाप्त नहीं होता। भारत के शास्त्रकारों ने विदेशियों का सदा शूद्र पद प्रदान किया है। हूणों को मलेच्छ कहा गया है, किंतु जहां तक गुर्जरों का प्रश्न है, उन्हें सर्वत्र ब्राह्मण कहा गया है। वेनसांग गुर्जर नरेश को क्षत्रिय बताता है। पृथ्वीराज रासों में अग्निकुल के राजपूतों की जो कथा मिलती है उसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। दशरथ वर्मा ओझा आदि ने बताया है कि कथा का उल्लेख रासों की प्राचीन पांडुलिपियों में अप्राय है। इस प्रकार खजर जाति से गुजरों की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है। साहित्य अथवा इतिहास में कभी भी उन्हें विदेशियों से नहीं जोड़ा गया है। उनके लेखों में जो संकेत मिलते हैं, उनके आधार पर हम उन्हें ब्राह्मण मूल का स्वीकार कर सकते हैं, जिन्होंने कालांतर में क्षात्र धर्म धर्म ग्रहण कर लिया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रतिहारी नामक वैदिक याजकों का उल्लेख मिलता है। लगता है उन्होंने ही बाद में अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रियों की वृत्ति अपनी अपना ली तथा अपने को राम के भाई लक्ष्मण से संबंध कर लिया। गुर्जर प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया। ग्वालियर अभिलेख में इस वंश के शासक राम के भाई लक्ष्मण, जो उनके प्रतिहार द्वारपाल थे, का वंशज होने का दावा करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस वंश का आदि शासक राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ प्रतिहार के पद पर काम करता था, अतः इन्हें प्रतिहार कहा गया। गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। स्मित वेनसांग के आधार पर उनका आदि स्थान आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित भीममल मानते हैं। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार उनका मूल निवास स्थान उज्जैनी में था। राजनीतिक इतिहास। नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। वह एक पराक्रमी शासक था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने एक शक्तिशाली मलेच्छ शासक की विशाल सेना का नष्ट कर दिया। यह मलेच्छ संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिमी भारत की रक्षा की तथा उनके द्वारा रौंदे हुए अनेक प्रदेशों को पुनः जीत लिया। ग्वालियर लेख में कहा गया है कि मलेच्छ राजा की विशाल सेनाओं को चूर करने वाला मानो नारायण स्वरूप में वह लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि नागभट्ट ने अरबों को परास्त कर भणोज के आसपास का क्षेत्र छीन लिया था तथा अपनी ओर से चामान शासक भतृढ़ द्वितीय को वहां का शासक नियुक्त किया। हंसोट लेख से इसकी पुष्टि होती है कि जो नागभट्ट के समय में जारी करवाया गया था, इसके पहले अरबों ने जयभट्ट को पराजित कर भणोज पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु नागभट्ट ने प्रथम पुनः वहां अपना अधिकार स्थापित कर भतृढ़ को शासक बनाया। नागभट्ट का समकालीन अरब शासक जुनैद था। मुस्लिम लेखक अल बिलाउदरी के विवरण से पता चलता है कि जुनैद को अलावा मालवा के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी। इस प्रकार गुजरात तथा राजपुताना के एक बड़े भाग का वह शासक बन बैठा। वत्सराज। नागभट्ट प्रथम के पश्चात उसके दो भतीजे ककुक तथा देवराज ने शासन किया। वे दोनों निर्बल शासक थे, जिनकी किसी भी उपलब्धि के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। इस वंश का चौथा शासक वत्सराज 775 से 800 ईस्वी हुआ, जो देवराज का पुत्र था। वह एक शक्तिशाली शासक था, जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के शासक इंद्रायुद्ध को हराया तथा उसे अपने अधीन कर लिया। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने प्रसिद्ध भंडिश वंश को पराजित कर उसका राज्य छीन लिया। कुछ विद्वान इस वंश की पहचान हर्ष के ममेरे भाई भंडी द्वारा स्थापित वंश से करते हैं, लेकिन यह संदिग्ध है कि क्योंकि हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि भांडी ने कोई स्वतंत्र वंश अथवा राज्य स्थापित किया था। कुछ अन्य इतिहासकार इसे जोधपुर लेख में उल्लिखित भट्टीकुल बताते हैं। इस प्रकार इस विषय में कुछ निश्चित नहीं हो पाता। वत्सराज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता गौड़ों के विरुद्ध प्राप्त हुई। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय के राधनपुर से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि वत्सराज ने गौड़ देश के शासक को पराजित किया था। इसके अनुसार मदांध वत्सराज ने गौड़ की राजलक्ष्मी को आसानी से हस्तगत कर उसके दो छात्रों राजछत्रों को छीन लिया था। जयानाकित पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि उसके सामंत दुर्लभराज ने गौड़ देश पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया था। मजुमदार का विचार है कि प्रतिहारों तथा पालों के बीच युद्ध दोआब में कहीं हुआ तथा प्रतिहार सेनाएं बंगाल में नहीं घुसी। यह वत्सराज की सबसे बड़ी सफलता थी। यह पराजित नरेश पालवंशी शासक धर्मपाल था। इस प्रकार वत्सराज बुरी तरह परास्त कर दिया। भयभीत होकर वत्सराज राजपुताना के रेगिस्तान की ओर भाग गया। राष्ट्रकूट लेखों राम राधनपुर तथा बनी दिनदोरी से पता चलता है कि ध्रुव ने वत्सराज को पराजित करने के साथ साथ उन दोनों श्वेत राजछत्रों को तथा को भी हस्तगत कर लिया, जिसने उन्हें गौड़ नरेश से छीना था। ध्रुव का आक्रमण एक धावा मात्र था। उत्तर में अपनी शक्ति का एहसास कराने के उपरांत वह स्वदेश लौट गया। ध्रुव के वापस लौटने के बाद भी वत्सराज अवंती पर अधिकार नहीं कर पाया तथा उसकी शक्ति निर्बल बनी रही। इसका लाभ उठाते हुए उसके पाल प्रतिद्वंदी धर्मपाल ने भी वत्सराज को परास्त किया। उसने कन्नौज से वत्सराज द्वारा मनोनीत शासक इंद्रायुद्ध को हटाकर उसके स्थान पर चक्रायुध को शासक बनाया। उसने कन्नौज में एक दरबार किया जिसमें उत्तर भारत के अधीनस्थ राजाओं ने भाग लिया। इसमें वत्सराज को भी उपस्थित होने के लिए बाध्य होना पड़ा तथा उसकी स्थिति अधीन शासक जैसी हो गई। नागभट द्वितीय। वत्सराज के पश्चात उसका पुत्र नागभट द्वितीय गुर्जर प्रतिहारों का राजा हुआ। वह अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने में जुटा। ग्वालियर लेख में उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। उसके अनुसार उसने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुद्ध को वहां से भगा दिया तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। नागभट्ट ने आंध्र सिंध विदर्भ तथा कलंग को भी जीता। लेख में कहा गया कि इन देशों के राजाओं ने उसके सम्मुख उसी प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया जिस प्रकार से पतंग दीपशिखा के समक्ष करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में पालों तथा दक्षिण में राष्ट्रकूटों की शक्ति से भयभीत होकर ही उन राज्यों में ने प्रतिहार नरेश के समक्ष समर्पण किया होगा। अपनी स्थिति मजबूत बना लेने के बाद नागभट्ट ने पालों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया जिसके शासक धर्मपाल के हाथों उसके पिता वत्सराज की पराजय हुई थी। मुंगेर के समीप एक युद्ध में उसने धर्मपाल के नेतृत्व में पाल सेना को भी पराजित कर दिया। इस युद्ध में कक्कक बाहु धवल तथा शंकर गण जैसे उसके सामंतों ने भी भाग लिया था। चाटसुलेख में कहा गया है कि शंकर गण ने गौड़ नरेश को हराया तथा समस्त विश्व को राजनीतिक अपने विश्व को जीतकर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया था। यहाँ स्वामी से तात्पर्य नागभट्ट से ही है। इस प्रकार वह उत्तरी भारत का शक्तिशाली शासक बन बैठा। अपनी महानता एवं पराक्रम को सूचित करने के लिए नागभट्ट ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। परंतु नागभट्ट की शक्ति एवं पराक्रम को राष्ट्रकूट नरेश गोविंद सहन नहीं कर सका। अपने पिता की भांति उसने भी उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप किया। सर्वप्रथम उसने अपने भाई इंद्र को गुजरात का राज्यपाल बनाया तथा फिर पूरी शक्ति के साथ नागभट्ट पर आक्रमण किया। मन्ने सिसवै तथा राधनपुर के लेखों से इस बात की सूचना मिलती है कि नागभट्ट बुरी तरह पराजित किया गया। अलेतकर का विचार है कि दोनों के बीच यह युद्ध बुंदेलखंड के किसी क्षेत्र में लड़ा गया था। गोविंद ने चक्रायुद्ध तथा धर्मपाल को पराजित किया और विजय करते हुए हिमालय तक जा पहुंचा। किंतु सदा की भांति इस बार भी निजी कारणों से राष्ट्रकूटों को दक्षिण लौटना पड़ा। इस पराजय से नागभट्ट हताश नहीं हुआ तथा उसने उत्तर भारत के उनके राज्यों की विजय कर इस क्षति की पूर्ति कर ली। ग्वालियर अभिलेख में उसे अनार्थ किरात तुरस्क वत्स मत्स्य आदि का विजेता कहा गया। उसने लगभग उन सभी प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया जो पहले धर्मपाल के अधीन थे। शाकंभरी के चाहमान शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। अब नागभट्ट का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा नदी तक तथा गुजरात से लेकर बंगाल की सीमा तक विस्तृत हो गया। इस प्रकार वह अपने वंश की एक प्रतापी शासक था। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। रामभद्र। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र रामभद्र गद्दी पर बैठा हुआ अत्यंत दुर्बल शासक था जिसने मात्र 3 वर्षों तक राज्य किया। उसके समय प्रतिहारों को पालों के हाथों पराजय उठानी पड़ी। नारायण पाल के बादल लेख से सूचित होता है कि देवपाल ने गुर्जर राजाओं के घमंड को झूर झूर कर दिया तथा यहाँ तात्पर्य रामभद्र से ही प्रतीत होता है। किंतु साम्राज्य के कुछ दूरस्थ प्रदेशों पर उसका अधिकार बना रहा।